मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 27 मार्च 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही दोस्तों विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं गायत्री श्रीवास्तव गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, सुधीर भारती आपका गांव है मवई जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, सुमित यादव लाडपुर उत्तर प्रदेश से और मानसी बरवाला उत्तर प्रदेश से। तो गायत्री, सुधीर, सुमित और मानसी आप चारों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के मुख्य विषय के रूप में मैं अभी जो आईएएस के इंटरव्यू चल रहे हैं यूपीएससी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन धौलपुर हाउस नई दिल्ली में उनमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो उन प्रश्नों की एक छोटी सी वानगी पेश करूंगा जिसे मेरे पास भेजा है हमारे स्टूडेंट रहे हैं हमारी क्लास के नरेंद्र प्रसाद निराला दरभंगा बिहार के रहने वाले उन्होंने भेजा है। खासकर मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि इंटरव्यू के बारे में ही आपको अभी से जानकारी हो जाए और उसकी तैयारी आप प्री की तैयारी के साथ ही सही तरीके से कर सके। तो मुख्य विषय में हम उस पर बात करेंगे लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स रेडियो न्यूज में आपने सुना होगा एक खबर सुनी होगी कि चुनाव आयोग ने अभी पूरे देश में चुनाव का माहौल है बकायदे आचार संहिता लगी हुई है और उस दौरान उसने अलग अलग पूरे देश में अलग अलग चीजें पकड़ी जिसमें नकदी रकम भी पकड़ी गई, शराब पकड़ी गई, ड्रग्स पकड़े गए और दूसरी तरह की चीजें पकड़ी गई। और दरअसल ये जो चीजें पकड़ी गई हैं स्वाभाविक तौर पर हम कह सकते हैं कि ये मतदाताओं को रिझाने के लिए या उन्हें रिश्वत देने के लिए उन्हें अपने पक्ष में शामिल करने के लिए ले जाया जा रहा था। और आपको ताज्जुब होगा कि अभी तो इलेक्शन की शुरुआत हुई है, पहली वोटिंग ही 11 अप्रैल की होनी है और अभी तक पूरे देश में जो चीजें पकड़ी गई हैं उनकी कीमत है 540 करोड़ रुपए। मतलब 540 करोड़ रुपए का सामान पकड़ा जा चुका है। पता नहीं चुनाव जब तक संपन्न होंगे तब तक यह रकम कितने हजारों की हो जाएगी, चूंकि बकायदे चुनावी खर्च सीमित हैं। लेकिन क्या वास्तव में चुनाव उतने में ही संभव हो पाते हैं? इतनी कोशिश के बावजूद भी क्या चुनाव आयोग जो चुनाव में खर्च होता है उस पर नियंत्रण रख पाता है? क्योंकि एक हिंदुस्तान की राजनीति का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है मित्रों, और वह यह कि कैसे चुनाव को धन के प्रभाव से मुक्त किया जाए। चुनाव में क्योंकि जब लोग इतना पैसा खर्च करते हैं तो आप मान करके चलिए कि वो फिर कहीं ना कहीं उनका इन्वेस्टमेंट है। अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीत करके आता है तो ये मान करके चलता है कि 5 साल में मुझे उसे वसूलना है और फिर वो उसी तरीके से काम करेगा तो फिर कहां तो सिस्टम रह गया, कहां डेमोक्रेसी रह गई, कहां रूल्स एंड रेगुलेशंस रह गए। इसे एक दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि क्रोनिक कैपिटलिज्म है। इस पर आप बकायदे निगाह रखें कि किस तरीके से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है और उसके बारे में फिर चुनाव आयोग किस तरह के कदम उठाती है। ये मेरी समझ से एक अच्छे टॉपिक के रूप में आपके लिए उपयोगी रहेगा। दोस्तों एक दूसरी खबर जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, अखबारों में इसे जगह नहीं मिली है लेकिन कुछ अखबारों में जगह भी मिली है, वो मैं आपको सूचना के अधिकार से संबंधित है बताने जा रहा हूं। सूचना का अधिकार आपके सिविल सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए तो हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन आपके इस पर बकायदे सूचना के अधिकार पर पूछ लिया जाता है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक को एक वार्निंग दी है। देखिए बहुत बड़ी घटना, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं कि आप हाल की घटना के जरिए बताइए या उदाहरण के जरिए समझाइए, तो आपके पास जो उदाहरण हो या घटना हो उस स्तर का होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये वार्निंग दी है कि या तो आपसे जो जानकारी मांगी गई है वो आप जानकारी दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले रिजर्व बैंक से कह दिया था कि आप जानकारी दीजिए, या फिर परिणाम भुगतने को तैयार रहें। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट को वार्निंग देनी पड़ी। मामला क्या था, मामला देखिए कि एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें यह कहा गया था कि जो हमारे कुछ केंद्रीय बैंक हैं, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, आप कह लीजिए गवर्नमेंट के जो बैंक हैं, उनकी जांच पड़ताल हुई जब उनके एनपीए वगैरह बहुत बढ़ने लगे, उनमें बहुत ज्यादा घोटाला होने लगा, तो उनकी जांच पड़ताल हुई, तो याचिका करने वाले ने सिंपल से कहा था कि भाई जो जांच पड़ताल हुई है उनकी जानकारी उपलब्ध करा दे कि जांच पड़ताल में क्या पाया गया है। रिजर्व बैंक ने ऐसा कहने से मना कर दिया। रिजर्व बैंक ने जो अपनी तरफ से दलील दी वो यह कह करके कि ये जो जांच पड़ताल की रिपोर्ट है, जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, यह बेसिकली देखिए इन्वर्टेड कामा में है, भरोसे के तहत दी गई सूचना, भरोसे के तहत दी गई सूचना की परिभाषा में आती है। यानी कि बैंक के बीच में और जो हमारे क्लाइंट हैं उनके बीच में कुछ ऐसी गुप्त चीजें होती हैं कि हम एक दूसरे पर भरोसा करके विश्वास दिलाते हैं कि यह जानकारी किसी थर्ड पार्टी को नहीं दी जाएगी, तो ये जो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है यह उसी के तहत आती है, इसीलिए हम इसे जाहिर नहीं कर सकते, सूचना के अधिकार के तहत इसके बारे में नहीं बता सकते। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याद रखिए कि आपको, आपका और आपके क्लाइंट के बीच में जो भरोसा है वह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जनहित, कि उससे जनहित कितना जुड़ा हुआ है। भरोसे का संबंध है वो आप अपने पास रखिए और आप सूचना दीजिए। अब देखते हैं कि रिजर्व बैंक इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। मित्रों, अभी एक नाम बहुत तेजी से अखबारों में आ रहा है और उस पर काफी आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं, और वो नाम शायद आपके जेहन में हो, वो नाम है जैसिंडा अर्डर्न। जैसिंडा अर्डर्न ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, या ये नाम आपके जेहन में होना चाहिए। और आपको मालूम है कि अभी न्यूजीलैंड में जो मस्जिद पर आतंकवादी हमले हुए थे जिसमें काफी लोग मारे गए थे, तो इनका नाम जो चर्चा में आ रहा है वो इसलिए कि जो भी उन्होंने उस समय इस कार्यवाही की निंदा की, और इसके बाद जो मृतक के परिवार जन थे वहां प्रधानमंत्री बकायदे अपने सिर पर दुपट्टा ओढ़ करके गईं और उनके परिजनों से मिली, उन्हें गले से लगाया, उन्हें सांत्वना दिया, उन्हें ढाढ़स बंधाया, और उनके इस कार्यवाही की, या कह लीजिए कि इस घटना की आप कह लीजिए, पूरे के पूरे देश में बहुत जबरदस्त रूप से प्रशंसा हो रही है, बहुत ज्यादा प्रशंसा हो रही है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट इस घटना से जुड़ी हुई है फ्रेंड्स, कि जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में जो मुस्लिम आबादी है वह केवल 1% के आसपास है, केवल 1%, और अभी जो लोग मारे गए हैं देखिए वो मुस्लिम है, राइट। अब जब ये मुस्लिम मारे गए हैं इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री घर घर जा रही हैं, तो अब आप देखिए कि अगर हम वोट की राजनीति के लिहाज से देखें तो इससे सरकार को कोई फायदा नहीं हो सकता, सरकार की पार्टी को। इसका मतलब है कि उनकी ये जो कार्यवाही है ये बेसिकली गजब की मानवता से भरी हुई कार्यवाही है, जो एक तरह से राजनीति से बिल्कुल परे विशुद्ध रूप से मानवीयता पर आधारित कार्यवाही है। यह भी एक ऐसा उदाहरण है जिसका फोर्थ पेपर में जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं, जनरल स्टडीज में इसके फोर्थ पेपर के लिए। तो मित्रों, ये कुछ खबरें थी जो जिनकी चर्चा मैंने आपसे की। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और उसके तहत मैं जो इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। मेरे पास ये जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये इन्होंने भेजे हैं नरेंद्र प्रसाद निराला ने, जो हमारे बकायदे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं, हमारे थर्ड बैच के स्टूडेंट रहे हैं, दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं। ये 13 मार्च को ये शाहजहां रोड के यूपीएससी के भवन में गए थे और वहां कई स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद उन्होंने एक लिस्ट भेजी है, मैं आपको वो कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं। इन्होंने दो बातें कही हैं। पहला तो यह है कि जो प्रश्न पूछे गए, शुरुआत की गई उनकी जो अपना जो परफॉर्मेंस होता है वो जो अपना बायोडाटा देते हैं उस पर आधारित, और इसके बाद फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे जो उनके अपना जो बायोडाटा पर आधारित क्वेश्चंस होते थे वो कुछ इस तरह से कि आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके क्या विषय रहे हैं, फिर उस विषय पर कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते थे। अगर वो कहीं नौकरी कर रहे हैं तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है उस पर प्रश्न पूछ लिए जाते थे, और वे जिस जिला से हैं, जिस गांव से हैं, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस किए जाते थे जो बहुत ही सामान्य सा है, और इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर होते हैं वो इस तरह के प्रश्नों से ही इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं ताकि जो उनके सामने स्टूडेंट बैठा हुआ है वो धीरे धीरे अपने को नॉर्मल महसूस करने लगे, इसलिए ऐसा किया जाता है। राइट, थोड़ी देर में ही जो कैंडिडेट है वो अपने आप को बहुत सहज सा महसूस करने लगता है और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। सच पूछे तो जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये ज्यादातर करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं, और जब मैं करंट अफेयर्स पर बेस्ड की बात कर रहा हूं तो यह मत समझिए कि साल दो साल पहले के करंट अफेयर्स पर। ज्यादातर क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं जो बिल्कुल 5-7-10 दिन में ही घटित हुए हों। देखिए उसका कारण होता है, उसका कारण यह होता है कि जो मेंबर्स हैं वो ये नहीं चाहते कि स्टूडेंट जवाब ही न दे सके, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछो कि वो जवाब ही ना दे सके, क्योंकि जब स्टूडेंट जवाब ही नहीं दे सकेगा और कहता रहेगा कि आई डोंट नो तो फिर बातचीत का सिलसिला कैसे शुरू होगा, और अगर बातचीत का सिलसिला ही शुरू नहीं होगा तो आप बताइए कि जो मेंबर्स हैं वो कैसे जज कर सकेंगे कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस का लेवल कितना है, उसके थॉट में क्लियरिटी कितनी है, वो कितने ओरिजिनल तरीके से सोच सकता है, ये कैसे पता करेंगे वो। तो बातचीत तो चाहिए ना, तो इसलिए वो प्रश्न ही इस तरीके से करते हैं जहां बातचीत की संभावनाएं बने। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि 10-15 दिन की जो घटित हुई घटनाएं हैं, और वो भी जो बड़ी प्रोमिनेंट घटनाएं होती है, यानी कि बड़ी छोटी मोटी घटना कोई उठा ली, उन घटनाओं पर वो प्रश्न करते हैं। तो देखिए इस तरह की जो मेरे पास लिस्ट आई है वो लिस्ट मैं अब आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। मुआवजा वानिकी, जिसे आप कंपनसेशन फॉरेस्ट्री कहते हैं, हाल में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संबंधित क्वेश्चंस, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ फैसले दिए हैं, आधिकारिक गुप्त अधिनियम और आरटीआई, आधिकारिक क्या ऑफिशियल होना चाहिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एंड आरटीआई, आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के भी लगातार बहस चल रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलवामा हमला, नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलवामा अटैक, स्प्यूरियस ड्रिंकिंग। दोस्तों हो सकता है कि स्प्यूरियस ड्रिंकिंग से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो फरवरी की शायद बात है कि उत्तराखंड का एक गांव है बालूपुर, वहां एक जहरीली शराब पीने से लगभग 70 लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती भी थे, जिसकी पूरे देश में बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। बेसिकली ये अवैध शराब का ही एक रूप है जिसमें एथेनॉल और मिथेनॉल वो दोनों मिले हुए होते हैं, एथेनॉल और तो इसको कहा जाता है स्प्यूरियस ड्रिंकिंग, या कह लीजिए जहरीली शराब आप कह सकते हैं। तो उस पर प्रश्न पूछे गए। खेती संकट और समाधान आप किसानों का देख ही रहे हैं, जीएसटी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसी बीच में जब इंटरव्यू चल रहे थे तब ये हमारे रिजर्व बैंक ने ये सब घोषणा की थी, उसको आधार बना करके उन्होंने पूछ लिया, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, अमेरिका चीन और भारत की अर्थव्यवस्थाओं में तुलना, ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है आपको मालूम होनी ही चाहिए, मनुष्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अभी लगातार देख रहे हैं कि आप कितनी सारी बातें हो रही है, हम लोग बहुत सारे आर्टिकल इस पर प्रोवाइड कर रहे हैं और यहां तक कि करंट कंटेंट में भी हम लोगों ने इसे डाला है, आरटीआई और विसिल ब्लोअर, विसिल ब्लोअर की चर्चा अभी थोड़ी कम हो रही है लेकिन बीच बीच में इसकी आवाज उठती है, राज्यों का गठन, दहेज, बोइंग डिसमिशन, अभी आपने देखा कि एक बोइंग विमान कैसे क्रैश कर गया और उसके बाद उस कंपनी के जितने भी विमान थे वो सब के सब खड़े कर दिए गए, रेलवे सुरक्षा, मैनुअल स्केवेंजिंग, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री खासकर दिल्ली के संदर्भ में है, रेडक्लिफ रेखा और डुरंड रेखा जो हमारे सीमाओं को लेकर के कभी कभी बातें चर्चा में आ जाती हैं, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जो असम में तैयार हुआ, आपदा प्रबंधन, वन अधिकारी और वन निवासी जो वन अधिकार कानून 2006 को लेकर के है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से उन्होंने कुछ प्रश्नों की सूची भेजी है और आप लोगों ने महसूस किया होगा कि इनमें कोई भी शायद ही कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको बहुत ही नया सा लगा हो, सभी से आप थोड़ा बहुत वाकिफ हैं। हाँ ये बात अलग है कि अगर आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इन पर आपकी कमांड होनी चाहिए और ताकि आप बहुत अच्छे से उत्तर दे सके, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन भी इन सारे टॉपिक्स पर करते हैं, और आपने ये भी महसूस किया होगा कि इनमें से ज्यादातर टॉपिक ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 90% टॉपिक ऐसे हैं कि करंट कंटेंट, करंट डेली ऑडियो लेक्चर के तहत आप कह लीजिए, करंट कंटेंट के तहत कह लीजिए, प्रेस क्लिपिंग्स के तहत कह लीजिए कि आपको जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। तो मित्रों आपको चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मेंस देने के बाद आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, शुरू से ही आपको उसके बारे में सतर्क हो जाना चाहिए। और इंटरव्यू की तैयारी बहुत ही प्यारी तैयारी है, बहुत ही सरल और सहज तैयारी है, बशर्ते कि आप सतर्क रह सके। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: इंद्रमोहन आनंद, अंकित कुमार सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, आकांक्षा वर्मा झांसी उत्तर प्रदेश से, नरेंद्र प्रसाद निराला दरभंगा बिहार से, जिनकी चर्चा मैंने अभी की, ज्ञानेंद्र यादव, सूरज कुमार और जिया मीना, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।